दिन भर 14 अक्टूबर दिन बुधवार, मैं हूं रेहान फदर। नरेंद्र मोदी ने आखिरकार दादरी और गुलाम अली के मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी।
ताज्जुब ये होता है कि लोग प्रधानमंत्री से इस बात की उम्मीद रखते हैं कि वो दादरी में एक मॉब लिंचिंग हो उसकी जवाबदारी और उसके बारे में वो बोले, बजाय इसके कि यहाँ एक मुख्यमंत्री बैठे हैं जो कि दादरी सिर्फ इसलिए नहीं आते हैं, जिसकी मुख्य वजह ये है कि नोएडा उनके लिए अपशकुन माना जाता है।
दुनिया जहान की में जानेंगे रूस के सीरिया में हस्तक्षेप करने के क्या है राजनीतिक माने।
होना ये चाहिए था कि रूस की इस पहल का भी स्वागत होता, लेकिन इसके क्योंकि दूसरे परिणाम भी इसके निकल रहे हैं और एक कन्फ्रंटेशन का मुद्दा भी बन रहा है।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के दादरी में गोमांस खाने की अफवाह पर हुई अखलाक की हत्या और मुंबई में पाकिस्तानी गायक गुलाम अली के कार्यक्रम रद्द किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये घटनाएं काफी दुखद हैं। बांग्ला समाचार पत्र आनंद बाजार पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने इन घटनाओं पर दुख जरूर जताया, लेकिन ये भी कहा कि इन घटनाओं के पीछे केंद्र सरकार का कोई हाथ नहीं है। पिछले महीने दादरी में अखलाक को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था। तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दावूतोग्लू ने संकेत दिए हैं कि अंकारा में रैली में धमाकों के पीछे चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट और कुर्द अलगाववादी संगठन पीकेके दोनों का हाथ हो सकता है। अंकारा में शांति रैली में शनिवार को धमाकों में करीब 100 लोगों की मौत हो गई थी। दावूतोग्लू ने इस्तांबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जांच आगे बढ़ रही है। ट्विटर अकाउंट और आईपी एड्रेस से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इसकी प्रबल संभावना है कि इस्लामिक स्टेट और पीकेके दोनों इन हमलों के पीछे हो सकते हैं। ये थे अहमद दावूतोग्लू के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक किया जाएगा। मोदी ने कहा है कि फाइलें सार्वजनिक करने की प्रक्रिया अगले साल नेताजी के जन्मदिन 23 जनवरी से शुरू की जाएगी। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार विदेशी सरकारों से भी नेताजी से जुड़ी फाइलों को खोलने के लिए अनुरोध करेगी और इसकी शुरुआत दिसंबर में रूस से की जाएगी। सुभाष चंद्र बोस के परिवारजनों से आज प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात के बाद नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता संस्था मेडिसिन सान फ्रंटियर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार फैक्ट फाइंडिंग समिति ने अफगानिस्तान के कुंदूस शहर में अस्पताल पर कथित अमेरिकी हमले की जांच शुरू कर दी है। 1991 में स्थापना के बाद ये समिति पहली बार सक्रिय हुई है। एमएसएफ ने कहा है कि ये अस्पताल पर हमले की जांच की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कुंदूस में एमएसएफ के अस्पताल पर हमले में 22 लोगों की मौत हो गई थी। एमएसएफ ने कहा है कि वह हमले कि अमरीकी, अफगानिस्तान और नाटो की अलग अलग जांचों पर भरोसा नहीं कर सकता। तुर्की ने रूस और अमेरिका के राजदूतों को तलब कर चेतावनी दी है कि सीरियाई कुर्द गुटों को हथियार मुहैया न कराएं। ये बैठक अमेरिका के सीरिया के हस्का प्रांत में सीरियाई विद्रोही गुटों को पैराशूट के जरिए सैन्य हथियार और गोला बारूद पहुंचाने की खबर के एक दिन बाद की गई है। पिछले हफ्ते रूस के एक अधिकारी ने सीरिया के कुर्द गुट YPG के नेता सालिह मुस्लिम से बातचीत की थी। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फतल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के दादरी में गोमांस खाने की अफवाह पर हुई अखलाक की हत्या और मुंबई में पाकिस्तानी गायक गुलाम अली के कार्यक्रम रद्द हो जाने को दुखद बताया है। बांग्ला समाचार पत्र आनंद बाजार पत्रिका से बातचीत में प्रधानमंत्री ने इन पर दुख जरूर जताया, लेकिन अपनी सरकार का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि इन घटनाओं में केंद्र सरकार का कोई हाथ नहीं था। विपक्ष ने प्रधानमंत्री की इन मुद्दों पर चुप्पी साधने पर निंदा की थी। अधिक जानकारी जुबैर अहमद की इस रिपोर्ट में।
देश में हुई कई घटनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न आने पर विपक्ष की पार्टियों ने उनकी कड़ी निंदा की थी। अब उन्होंने दादरी मामले और पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली के प्रोग्राम के रद्द किए जाने पर खेद प्रकट किया है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया देर से आई? ऑनलाइन पत्रिका फर्स्ट पोस्ट के संपादक अजय सिंह कहते हैं,
प्रधानमंत्री बोल रहे हैं अच्छी बात है, वो उनको बोलना चाहिए और मान लीजिए लेट ही बोल रहे हैं, लेकिन हम इस पूरे सवाल को एक दूसरे नजर से देखते हैं कि बिसारा में ये घटना आखिर हुई क्यों, ये फेलियर किसका था। आपको ताज्जुब होगा कि एक सब इंस्पेक्टर वहां पे सैक नहीं हुआ इसके लिए।
अजय सिंह के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसके जिम्मेदार हैं, लेकिन इसके बावजूद उनसे कोई सवाल नहीं करता।
मुझे ताज्जुब ये होता है कि लोग प्रधानमंत्री से इस बात की उम्मीद रखते हैं कि वो दादरी में एक मॉब लिंचिंग हो उसकी जवाबदारी और उसके बारे में वो बोले, बजाय इसके कि यहाँ एक मुख्यमंत्री बैठे हैं जो कि दादरी सिर्फ इसलिए नहीं आते हैं, जिसकी मुख्य वजह यह है कि नोएडा उनके लिए अपशकुन माना जाता है, इस बात पे कोई सवाल ही नहीं उठाता। वो कोई दरोगा वहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता है।
पिछले महीने दादरी में 50 साल के अखलाक को सैकड़ों की भीड़ ने घर में घुस कर मार डाला था। भीड़ ने अखलाक के 22 वर्षीय बेटे दानिश को भी अधमरा कर दिया था। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। पिछले हफ्ते जाने माने पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली, भारतीय गायक जगजीत सिंह की याद में आयोजित एक कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन शिवसेना के विरोध के बाद कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा था। पहली बार सीधे तौर पर दादरी और गुलाम अली का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह की घटनाएं पहली बार नहीं हुई हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस तरह की घटनाओं का समाधान बातचीत से ही संभव है। हालांकि श्री मोदी ने पिछले हफ्ते बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान दादरी घटना का नाम लिए बगैर कहा था कि लोगों को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बातों पर ध्यान देना चाहिए। नवादा में आयोजित रैली में प्रधानमंत्री ने कहा था, आप राजनेताओं की बात मत सुनिए, खुद मेरी बात मत सुनिए, सुनना है तो देश के राष्ट्रपति की बात सुनिए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हाल में नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था, हम अपनी सभ्यता को खोने नहीं दे सकते, हमारे आधारभूत मूल्य हैं कि हमने हमेशा विविधता को स्वीकार किया है, सहनशीलता और अखंडता की वकालत की है। प्रधानमंत्री की प्रतिक्रियाओं पर आज अखबारों और सोशल मीडिया में काफी चर्चा हो रही है। जुबैर अहमद, BBC दिल्ली।
खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि 23 जनवरी 2016 को नेताजी सुभाष बोस से संबंधित सारी फाइलें सार्वजनिक कर दी जाएंगी। आज नेताजी सुभाष के परिवार वालों ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। हमारे साथ स्टूडियो में विनीत खरे हैं, बताइए क्या और जानकारी है आपके पास।
रिहान, करीब 50 मिनट पहले 3 तस्वीरें नरेंद्र मोदी का जो ट्विटर हैंडल है उनसे जारी की गई हैं, और उसमें चारों तरफ कुर्सियां हैं, सुभाष चंद्र बोस का परिवार बैठा हुआ है, छोटे बच्चे हैं, राजनाथ सिंह भी वहां नज़र आ रहे हैं। एक फ़ोटो में नरेंद्र मोदी हाथ में माइक लिए हुए हैं। तो ये जो परिवार है उनसे मुलाकात की है नरेंद्र मोदी ने, और अपने ट्वीट में कहा है कि 23 जनवरी 2016 जो कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, उस मौके पर जो क्लासिफाइड्स फाइल हैं उसे अनक्लासीफाइड करने का काम शुरू होगा। नरेंद्र मोदी ये भी कह रहे हैं कि जो विदेशी सरकारें हैं, खासकर रूस में जहां कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलें हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट की जाएगी, कोशिशें की जाएंगी कि उन फाइलों को डीक्लासीफाई किया जाए। आपको याद होगा इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सुभाष चंद्र बोस की जो फाइलें थीं उसे डीक्लासीफाई किया गया था, और उस वक्त ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कहा था कि हमने कर दिया है, अब केंद्र सरकार से हमारी गुजारिश होगी, वो भी करेंगे। नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों किया? राजनीति है तो उसके राजनीतिक मायने ज़रूर निकाले जाएंगे। चुनाव हैं अगले साल, पश्चिम बंगाल में महत्वपूर्ण चुनाव हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार के बाद, तो जो एनालिस्ट होंगे वो इसे राजनीति से जोड़ रहे होंगे, लेकिन उसका कहीं जिक्र आज नरेंद्र मोदी ने नहीं किया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में कहा है कि अगर लोग और तस्वीरें देखना चाहें तो नरेंद्र मोदी जो ऐप है उसे डाउनलोड करके और सी तस्वीरें जो परिवार के साथ उनकी खींची वो देख सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनीत खरे। बिहार में पहले चरण के चुनाव के बाद अब दूसरे चरण के चुनाव पर लोगों की नजर लगी हुई है। दूसरे चरण के लिए 16 अक्टूबर को मतदान होना है। मतदान वाले क्षेत्रों में गया भी है जहां चुनाव प्रचार जोरों से चल रहा है। गया से सलमान रावी ने यह रिपोर्ट भेजी है।
दिलाए, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कमोबेश यही नजारा सभी 32 विधानसभा की सीटों पर रहा, जहां प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने खूब पसीना बहाकर मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की। शहरी इलाकों में तो प्रचार वाहन दिन भर शोर मचाते रहे और अपने अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगते रहे। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी खूब प्रचार हुआ, मगर उसके तरीके अलग थे। कहीं नारे लगाते हुए नौजवानों का जुलूस, तो कहीं अपने लोक भाषा में औरतों के चुनावी गीत। प्रचार का रंग खूब सर चढ़कर बोला। गया शहर में मेरी मुलाकात कांग्रेस के प्रत्याशी प्रिय रंजन उर्फ डिंपल से हुई।
क्या मुद्दे लेकर डिंपल जी जनता के बीच में आप जा रहे हैं? क्या
विकास का मुद्दा है, डेवलपमेंट ऑफ द यूथ और लोगों का जो यूथ का खास करके जो अपनी सोच है उसका प्रतिबिंब आए, सामने आए, उभर के आए, ये हम चल रहे हैं।
तभी जनता दल यूनाइटेड से बड़ी तलखियाँ थी आपकी, पिछला ही चुनाव ले लीजिए, अब साथ में चलना ये कैसा लग रहा है अब आपको?
नहीं नहीं नहीं, वो सफ़र के दौरान जैसे ट्रेन का सफ़र होता वैसे ही होता है, जैसे कभी कभी कई बार पटरी बदल के चलना पड़ता है, सफ़र है ना, राजनीति में होता रहता है।
वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी के चुनाव क्षेत्र इमामगंज में भी काफ़ी हलचल थी और जगह जगह पर नरेंद्र मोदी का वो भाषण जिसमें उन्होंने मांझी की तारीफ की थी बजा कर लोगों को सुनाया जा रहा था। उधर प्रशासन ने भी दूसरे चरण के मतदान के लिए कमर कस ली है। चूंकि दूसरे चरण में कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह से नक्सल प्रभावित हैं, इसलिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती पहले से ही की जा रही है ताकि मतदान कर्मी अपने केंद्रों पर सुरक्षित पहुंचाए जा सके। बहरहाल राजनीतिक दलों के चोंगे बंद हो गए और 16 अक्टूबर को उनकी किस्मत भी EVM मशीनों में बंद हो जाएगी। सलमान रावी, BBC, गया।
बिहार चुनावों पर हमने एक विशेष सीरीज बूझिए ना बिहार को शुरू की है और इस सीरीज में हम आपको अगले कुछ दिनों तक राज्य से जुड़े मिथकों और तथ्यों के बारे में बताते रहेंगे। तीसरी कड़ी में जानिए कि क्या कांग्रेस बिहार में उजड़ चुकी है।
बूझिए ना बिहार को CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार से आज का सवाल,
क्या कांग्रेस बिहार में उजड़ चुकी है?
ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कांग्रेस बिहार में उजड़ चुकी है। इतनी बड़ी पार्टी है और इतनी बड़ी पुरानी पार्टी है, ये मान लेना कि ये पार्टी बिल्कुल समाप्त हो गई है थोड़ा मुश्किल है। अगर आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखें तो कांग्रेस को एक जमाने में 40-45% वोट मिलते थे, वो वोट धीरे धीरे गिरते गिरते आज शायद 9-10% ही बचा है। पिछली बार कांग्रेस जब बिहार में शासन में रही वो 1985 का चुनाव था जब कांग्रेस का बिहार में शासन आया, और उसके बाद से कांग्रेस लगातार बिहार के शासन से बाहर रही है।
तो क्या हम ये मान लें कि इन चुनावों में कांग्रेस का खेल खत्म?
ऐसा मान लेना जल्दबाजी होगा। इसका कारण स्पष्ट है, कांग्रेस के जो 10% वोट अभी बचे हैं यह वोट बल्कि अलग अलग पार्टियों को अलग अलग एक समुदाय में खास पैठ होती है और एक समुदाय से वोट आता है। कांग्रेस का 10% वोट अभी भी अलग अलग समुदाय अलग अलग वर्ग में बटा हुआ है। ये जो गठबंधन है RJD JDU और कांग्रेस का गठबंधन, अगर इस पर गौर करें तो कांग्रेस को 41 सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी गई हैं। इसका खास कारण ये है, कांग्रेस का वोट अभी भी ऊंची जातियों में थोड़ा बरकरार है और शायद यह गठबंधन इस उम्मीद में है कि इस गठबंधन से ऊंची जाति का थोड़ा बहुत वोट कांग्रेस के कारण इस गठबंधन को भी मिलेगा। शहरी इलाकों में कांग्रेस अभी भी ग्रामीण इलाकों की तुलना में ज़्यादा पॉपुलर है और यही कारण है कि कांग्रेस का खेल समाप्त हो गया, ऐसा मान लेना जल्दबाजी होगी।
बूझिए ना बिहार को, देश दुनिया की खबरें 2400 घंटे bbchindi.com के साथ।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। इसराइल के मंत्रिमंडल ने एक आपात बैठक के दौरान ये फैसला किया है कि हाल के दिनों में हिंसा के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए पुलिस को यरूशलम के कुछ हिस्सों को सील करने का अधिकार दे दिया जाए। कल यरूशलम और केंद्रीय इसराइल में गोलीबारी और चाकू से हमले की घटनाओं में 3 इसराइली नागरिक मारे गए थे और 20 से ज्यादा घायल हुए थे। बीबीसी संवाददाताओं से मिली रिपोर्टों का सार सुनिए प्रगति सक्सेना से।
इसराइली सेना पुलिस की मदद करने के लिए सैकड़ों अतिरिक्त बल तैनात कर रही है ताकि हाल में ही बढ़ रही हिंसा पर काबू पाया जा सके। अधिकृत पूर्वी यरूशलम के फलस्तीनी बहुल इलाकों में नाके बनाए गए हैं। फलस्तीनी अगर इसराइली पर हमला करते हैं तो अधिकारी अब उनके मकानों को ढहा सकते हैं और फिर उन्हें यरूशलम में रहने का हक भी नहीं रहेगा। अलक्सा मस्जिद के अहाते में दाखिल होने पर इसराइली और फलस्तीनी नागरिकों में हुए तनाव के बाद ये हिंसा शुरू हुई। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच की सारी बाशी का कहना है कि इसराइल के इस फैसले से दोनों समुदायों में तनाव और बढ़ जाएगा। सारी बाशी कह रही हैं,
The recent wave of attacks against Israeli civilians would challenge any police force, but locking down Palestinian neighborhoods in East Jerusalem.
इसराइली नागरिकों पर जो हालिया हमले हुए हैं वो किसी भी पुलिस फोर्स के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन उसके कारण यरूशलम के फलस्तीनी इलाकों को सील करना गलत है। इस नाकाबंदी से सिर्फ हमलावरों के नहीं बल्कि आम फलस्तीनियों के आने जाने पर भी रोक लग जाएगी। फलस्तीनियों के प्रति इसराइली अधिकारियों की उपेक्षा और दुर्व्यवहार का जो लंबा इतिहास रहा है उसे देखते तो इस फैसले से नागरिकों और पुलिस के बीच तनाव बढ़ेगा ही। इसराइल फलस्तीन सेंटर फॉर रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन नाम के विचार मंच के निदेशक गेर्शोन बास्किन फिलहाल यरूशलम में हैं। उन्होंने वहां के माहौल के बारे में बताया,
The situation is extremely tense. People are afraid to go out of their homes.
स्थिति बहुत तनावपूर्ण है, लोग अपने घरों से निकलने में भी डर रहे हैं। कल मैं यहाँ काफी घूमा, आमतौर पर यहाँ बहुत ट्रैफिक होता है लेकिन कल सड़कें बिल्कुल खाली थीं। अरब यहूदी इलाकों में जाने से डर रहे हैं और यहूदी अरब इलाकों में जाने से। ये शहर जितना विभाजित लग रहा है उतना शायद पहले कभी नहीं था।
गेर्शोन बास्किन के शब्द। इसराइली मंत्रिमंडल के इस फैसले की निंदा फलस्तीनी इलाकों में शुरू हो गई है। फलस्तीन अधिकृत क्षेत्र के विदेशी मामलात के एक अधिकारी माजिद बाम्या ने बीबीसी को बताया कि इसराइल इस हिंसा पर दुनिया की समझ में हेर फेर करना चाहता है।
यहाँ स्थिति बहुत तनावपूर्ण है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस हिंसा में इसराइली ही वकील हैं, पीड़ित हैं, जेलर हैं और अब इसके कथावाचक भी। वो चाहते हैं कि आप ये भूल जाएं कि ये हिंसा किस लिए हो रही है। फलस्तीनियों पर अत्याचार लगातार 70 सालों से हो रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप ये मान लें कि ये घटनाएं पिछले कुछ ही दिनों से शुरू हुई हैं।
ये बात कोई राज नहीं कि इस इलाके में फलस्तीनी लोग दमन का शिकार होते रहे हैं, लेकिन उससे हाल में हुई हिंसा को न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता, ना ही इसकी जवाबी कार्रवाई में इसराइली पुलिस और सेना का फलस्तीनी इलाके को सील करना। मसला आपसी विश्वास और सह अस्तित्व का है जिसे किसी भी पक्ष की हिंसा या आक्रामकता सुलझा नहीं सकती।
इसराइल के मंत्रिमंडल की आपात बैठक। पश्चिमी देश और अमरीका चाहते हैं कि इस्लामिक स्टेट का खात्मा हो और इसके लिए वो दुनिया के देशों से साथ आकर सहयोग करने को कह रहे हैं। हालांकि रूस ने जब इसके लिए कदम बढ़ाए तो यही देश आशंकित भी है। जानकारों का मानना है कि यह आशंका इस बात से है क्योंकि सीरिया में रूस का आना पूरे इलाके के भू राजनीतिक परिदृश्य को बदल देगा। कैसे? दुनिया जहान में निखिल रंजन ने यही जानने की कोशिश की है।
दुनिया जहान।
दुनिया के दो ताकतवर नेता बराक ओबामा और व्लादिमीर पुतिन की आमने सामने मुलाकात कम ही होती है। बीते महीने संयुक्त राष्ट्र आमसभा में जब दोनों रूबरू हुए तो हाथों में शैंपेन की ग्लास के साथ चेहरे पर मुस्कुराहट थी और दुनिया भर के विश्लेषक इस मुलाकात का मतलब निकालने में जुटे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि महज 48 घंटे में ही ये मुस्कान चढ़ी हुई त्योरियों में बदल जाएंगी। रूसी लड़ाकू विमान और कैस्पियन सागर के युद्धपोतों से सीरिया में जब इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर बम गिरने शुरू हुए तो कुछ ऐसा ही हुआ। फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया समेत दूसरे कई देश इस इलाके में हवाई हमले कर रहे हैं। लेकिन पश्चिमी देशों की नज़र रूस पर है, क्योंकि उन्हें आशंका है कि रूसी बमों का निशाना केवल इस्लामिक स्टेट के चरमपंथी ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति बशर अल असद के उदार विरोधी भी हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा,
ये बड़ा ही एक पेचीदा मामला है, क्योंकि एक तरफ तो सारी दुनिया के देश ये कह रहे हैं कि हमको आतंकवाद का मिलके सामना करना है, और जिस तरह से इस्लामिक स्टेट एक बहुत बड़ा आतंकवादी, एक बहुत खतरनाक आतंकवादी गुट बन के उभरा है, तो उसमें हालांकि देखना सारी दुनिया के देशों को ये चाहिए कि जो भी उसके अंदर एक सांझी समझ बन पाए और उसको एक वहाँ पे जो गुट है उसको किस तरीके से उसका मुकाबला किया जाए, तो उसमें तो हालांकि होना ये चाहिए था कि रूस की इस पहल का भी स्वागत होता, लेकिन इसके क्योंकि दूसरे परिणाम भी इसके निकल रहे हैं और एक कन्फ्रंटेशन का मुद्दा भी बन रहा है, तो पूरा यूरोप भी और मुझे लगता है कि पश्चिम के देश भी काफ़ी एक पेचीदा स्थिति में है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इसका विरोध करें, क्योंकि विरोध उनका इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे जो है रूस काफ़ी मजबूत बन रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी थोड़ा इसका फ़ायदा उनको मिल रहा है क्योंकि उससे थोड़े घबराए भी हुए हैं जिस तरह से इस्लामिक स्टेट जो है वो मजबूत हुआ है।
अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने संयुक्त राष्ट्र में सीरिया के मुद्दे पर सभी देशों से साथ आकर विद्रोहियों की मदद करने और इस्लामिक स्टेट से लड़ने की बात कही, तो पुतिन ने संकट के हल का प्लान बी पेश कर दिया। दिल्ली के इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिसिस के रिसर्च फेलो राजोर्षी राय,
पुतिन जो बोल रहे हैं कि ये जो स्ट्रेटेजी है IS के फाइटर्स को हटाने के लिए, ये काफी हद तक सही है, क्योंकि अगर आप देखें रशिया में उनके सदर्न कॉकेसस में 2000 से 3000 रशियन मुस्लिम्स जो हैं वो अभी इस्लामिक स्टेट के साथ लड़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा चांसेस जो है कि ये इस्लामिक स्टेट के जो मिलिटेंट्स हैं ये रशिया में वापस आके यहाँ पे तबाही मचाएं, उसको रोकने के लिए ये स्ट्रेटजी डेफिनेटली एक पुतिन का है।
पुतिन चाहते हैं कि इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए इराक ईरान के साथ खुफिया सूचनाएं साझा की जाएं और असद के विरोधियों का सफाया हो। ये वही विरोधी हैं जिन्हें अमेरिका से प्रशिक्षण और हथियार मिलता है। रूसी हमले के बाद अमेरिका ने नीति बदलने और प्रशिक्षण बंद करने का ऐलान किया है, लेकिन हथियार मिलते रहेंगे। इन विरोधियों ने पिछले 2 सालों से सीरिया में गृह युद्ध छेड़ रखा है, तो क्या अमेरिका और रूस सीरिया के मुद्दे पर आमने सामने होंगे?
रशिया और US को पता है कि स्टेक्स क्या है, उनको पता है कि एक छोटे से इंसिडेंट से ये इंसिडेंट पूरा बड़ा हो सकता है, तो बैक चैनल डिप्लोमेसी जो हम जिसको बोलते हैं उस हिसाब से बातचीत जारी है, और ऐसा न्यूज में आया है कि रशिया और US थोड़ा सा एटलीस्ट कोऑर्डिनेट करेंगे कि किस हिसाब से कहां पे वो बॉम्ब डाल रहे हैं, तो इससे एटलीस्ट जो कॉन्फ्रंटेशन होगा वो काफी हद तक वो आपका निगेट हो जाएगा।
बीते कुछ सालों में अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अलग थलग करने की कोशिश की है। नतीजा ये हुआ है कि रूस अकेला पड़ता गया है। दूर दराज के देशों तक तो उसने भेदभाव सहन कर लिया, लेकिन जब उसके प्रभाव वाले इलाकों में भी ऐसी कोशिशें हुई तो उसने झुकने से इनकार कर दिया। क्राइमिया को साथ मिलाकर और यूक्रेन के मामले में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे डटे रहकर उसने अपने इरादे जता दिए हैं। अब सीरिया में घुसकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी खोई भूमिका हासिल करने की दिशा में भी उसने कदम बढ़ाए हैं। प्रोफेसर गुलशन सचदेवा,
जब उसको कामयाबी मिली क्रीमिया को अपने साथ मिलाने में, और उसके बाद भले ही उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए हों, लेकिन तब से थोड़ा बहुत मजबूत जरूर रूस पहले से अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हुआ है, और उसी का फायदा उठाते हुए फिर एक उसने दूसरी बड़ी पहल की है, और अपने साथी को जो जिसको वो मानता है कि इसको भी वो अब गिराने पे लगे हुए थे, तो उसके ऊपर अब रूस का सिर्फ यहीं पे नहीं होगा, इसका परिणाम ये होगा कि अगर वो यहाँ से जैसे मैंने कहा कामयाब होगा, तो जितने दूसरे बड़े बड़े समस्याएं जो भी हों, चाहे वो अफगानिस्तान की समस्या हो, चाहे वो इसके साथ इराक के अंदर जो चीज़ चल रही है, उसके बाद जो दूसरी अफ्रीका के अंदर भी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, तो सब जगह पे रूस अब चाहेगा कि सिर्फ वो अपने सीमित क्षेत्र में ही दबके नहीं रहे, बल्कि जैसे पहले वाला उसका दबदबा था, वो दबदबा तो आपका कभी उसका भी आ नहीं सकता है, लेकिन कम से कम उसको एक बिल्कुल छोटी शक्ति के रूप में जो है पश्चिम के देश ना माने।
लटाकिया के सैनिक अड्डे पर अब रूसी विमानों की चहलकदमी है, और खबर है कि सीरिया में इस्लामिक स्टेट के पांव उखड़ने लगे हैं। बशर अल असद के वफादार सैनिकों ने इन इलाकों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। रूसी बमों का असर सीरिया के बाहर भी हुआ है। इराक ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग में रूस की दखल का अपने देश में भी स्वागत करने का ऐलान किया है। उधर सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे देशों ने भी रूस के साथ बातचीत शुरू की है। पश्चिमी देश अमेरिका और सऊदी अरब असद को सत्ता से हटाना चाहते हैं, लेकिन रूस के पास सीरियाई नेता का समर्थन करने की अपनी वजहें हैं। राजोर्षी राय,
क्योंकि अगर आप देखें रशिया के पास जो फ्रेंडली कंट्रीज जिसको हम बोलते हैं वो है सिर्फ ईरान टू एन एक्सटेंट और सीरिया। अगर सीरिया हाथ से निकल जाए तो रशिया के पास एज एन एलाई और कोई नहीं है।
अपुष्ट खबर आई है कि रूसी हमले में इस्लामिक स्टेट के कई नेता घायल हुए हैं, हालांकि उनके सबसे बड़े नेता अल बगदादी इन हमलों की जद में नहीं आए हैं। पश्चिमी देशों का आरोप है कि कई निशाने चूके हैं और नागरिक इलाकों में क्षति हुई है। आरोप ईरान में बम गिरने के भी लगे, लेकिन रूस इन बातों से बेपरवाह है। उसके बमों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो खलबली मची है उसने निशाना चूकने के साथ ही बम दागने के औचित्य पर उठते सवालों को भी दबा दिया है। निखिल रंजन, बीबीसी, दिल्ली।
और इंदौर में इस समय भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जा रहा है। भारत ने पहले खेलते हुए 247 रन बनाए थे और दक्षिण अफ्रीका ने 6 विकेट खो दिए हैं। आदेश मेरे सामने बैठे हुए हैं और पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं मैच पर। बताएं क्या स्थिति है इस समय।
स्थिति ऐसी है रेहान की, आधे घंटे पहले तो लग रहा था कि जैसे शरीर में जान नहीं है, लेकिन अब दिल की धड़कनें बहुत ऊपर नीचे हो रही हैं, क्योंकि जो दक्षिण अफ्रीकी टीम है उसके सामने जीत के लिए जो 248 रनों का लक्ष्य है, अब उनका स्कोर 34वें ओवर में 6 विकेट खोकर 177 रन है, यानी पासा कहीं भी पलट सकता है। अगर थोड़ी देर पहले की बात की जाए तो मैच में कोई रोमांच जैसी बात नहीं थी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट खोकर 134 रन बना लिए थे, लेकिन इसके बाद दो जादुई कैच पकड़े विराट कोहली ने, बहुत ही शानदार फील्डिंग की। पहले तो अक्षर पटेल की गेंद पर उन्होंने फैफ डुप्लेसिस का कैच पकड़ा जिन्होंने 51 रन बनाए, और उसके बाद उन्होंने एबी डिविलियर्स का बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा जब मोहित शर्मा की गेंद को हिट करने की कोशिश की एबी डिविलियर्स ने, उन्होंने 19 रन बनाए थे। आज हालांकि अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने 9 विकेट खोकर जिस तरह से 247 रन बनाए वो काफ़ी कम स्कोर लगता था। आज भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही, रोहित शर्मा रबाडे की गेंद पर कब बोल्ड होगा उन्हें पता ही नहीं चला, बहुत ही अच्छी गुड लाइन पर पिच होकर गेंद जैसे ही निकली रोहित शर्मा ने ड्राइव करने की कोशिश की बोल्ड हो गए। शिखर धवन ने 23 रन ज़रूर बनाए लेकिन उनकी बल्लेबाजी में पैनापन नहीं था। अजिंक्य रहाणे ने एक बार फिर अच्छी पारी खेली 51 रन बनाए, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं जिसका खामियाजा विराट कोहली को भुगतना पड़ा। रनिंग बिटवीन द विकेट के दौरान विराट कोहली रन आउट हुए, लेकिन कप्तान धोनी ने बहुत ही शानदार कप्तान की पारी खेली, नाबाद 92 रन बनाए, 86 गेंदों के दौरान उन्होंने 7 चौके और 4 छक्के लगाए। अगर भारत की बात की जाए तो 3 परिवर्तन आज देखने को मिले, अक्षर पटेल आए, अमित शर्मा बाहर गए, हरभजन सिंह टीम में आए, आर अश्विन को चोट लगी हुई थी, और इसके अलावा स्टुअर्ट बिन्नी टीम में आए और टीम से बाहर गए, उनकी जगह मोहित शर्मा को टीम में लिया गया, तो बदलाव भी काफ़ी आलोचना का कारण बने क्योंकि अमित शर्मा ने पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की। अभी फिलहाल अगर मैच की बात की जाए तो ऐसा लगता है कि भारतीय गेंदबाजों में थोड़ा सा जोश तो है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा और अगर विकेट जल्दी नहीं गिरे तो फिर मैच आज से फिसल सकता है।
हालांकि 6 विकेट गिर गए हैं, टेल उनकी खेल रही है, लेकिन वो लोग मार रहे हैं, रन बना रहे हैं। इस वक्त थोड़ा सा एज मैं कहूँगा भारत के लिए है, लेकिन अभी भी दक्षिण अफ्रीका ने हार नहीं मानी है।
जी रेहान, क्योंकि उनके पास फरहान बिहारदीन जैसा बल्लेबाज अभी विकेट पर है जिन्होंने पिछले मैच में भी नाबाद 35 रन बनाए थे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदेश। और आखिर में एक नज़र मुख्य समाचारों पर।
बीबीसी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के दादरी में गोमांस खाने की अफवाह पर हुई अखलाक की हत्या और मुंबई में पाकिस्तानी गायक गुलाम अली के कार्यक्रम रद्द किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए इन घटनाओं को दुखद बताया है। तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दाऊतोग्लू ने संकेत दिए हैं कि अंकारा में रैली में धमाकों के पीछे चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट और कुर्द अलगाववादी संगठन पीकेके दोनों का हाथ हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक किया जाएगा। मोदी ने कहा कि फाइलें सार्वजनिक करने की प्रक्रिया अगले साल नेताजी के जन्मदिन 23 जनवरी से शुरू की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय संस्था MSF ने कहा है कि कुंदूज शहर में अस्पताल पर कथित अमरीकी हमले की जाँच शुरू कर दी जाएगी। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की हेमंत कुशवाहा ने। रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।